सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे विवुद्धशयले अच्छत्थबहिथबन्धनं मुके भत्तिये अहं नमियुं पुनो पुनो बंधनम वोच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें अभी बंधन अनुयोग द्वार चल रहा है और उसमें बंधनीय की बात देख रहे हैं हम। हमने जो 23 वर्गणा देखी थी उसमें से बादर निगोद वर्गणा देख रहे हैं, याद है ना? हाँ। पृष्ठ संख्या 110। देखो हमने 109 पृष्ठ पर नीचे पढ़ा था, ये जो ये बादर निगोद वर्गण हमने कहाँ से देखनी शुरू की थी? जघन्य जो है वो क्षीण कषाय के अंतिम समय में, फिर उसमें एक एक परमाणु कैसे बढ़ते वो बात सब की, फिर एक एक समय नीचे उतरते 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 पहले तो गुणश्रेणी रूप मरण में उसकी बात की, और उसके पश्चात विशेष अधिक मरण वाले, तो वहाँ कुछ नीचे उतर कर आए तो उसी के समान ये जो मूली थुअर आदि उसमें जो होते हैं तो उसके सदृश है, तो वहाँ से शुरू किया, क्योंकि हमको स्थान ही बताने ना, अलग अलग स्थान बताने, तो वहाँ भी है स्थान परंतु अभी ये मूलियों में वगैरह बताना है। इसलिए देखो यहाँ 109 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, विशेष अधिक मरण के अंतिम स्पर्धक के साथ। अंतिम स्पर्धक का भी कहा कि स्पर्धक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जीव ज्यादा 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 है, एक एक समय हम क्षीण कषाय का उल्टा नीचे आते हैं तो उसमें जीवों का अंतर पड़ता है, परमाणुओं के अंतर की बात नहीं है, क्योंकि पूर्व पूर्व समय में जीव ज़्यादा है, फिर भी उन जीवों के पश्चात वाले समय के साथ जो वहाँ पुद्गल की संख्या है उतनी हो सकती है। इस तरह से पुद्गल को तो एक से एक से एक से बढ़ाया था, परंतु जीव तो अंतर से यानी एकदम ज़्यादा बढ़ते हैं, तो वहाँ उनका पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक कहा था। ऐसे नीचे अंतिम स्पर्धक तो आए थे हम, तो उसके साथ वैसे ही सदृश यहाँ स्वयं रमण द्वीप के स्वयं प्रभ नगेंद्र की बाह्य दिशा में, वहाँ जो बड़े बड़े जो मूली थुअर, मूल थुअर और लता आदि जो उन्होंने बताए, तो उसमें भी सदृश उतने ही परमाणु वाली वर्गणा वहाँ पाई जाती है। हाँ, आपने पूछा ये स्वयंभू रमण के उस पार वाले क्यों बताए, यहाँ के क्यों नहीं लिए? क्योंकि वहाँ वो बड़े बड़े अवगाहना वाले हैं, इसलिए उनको लिया, और हमें बड़ा सा बड़ा स्कंध लेना है, शरीर की अवगाहना वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ वो संख्या भी उनकी ज़्यादा होगी, उसके आधार से रहने वाले निगोदों की, पुलवी और निगोदों की, तो अंत में जाकर वो महामत्स्य तक पहुँच जाएंगे। अभी तो यहाँ मूली थोर आदि बताएं, आदिक में सदृश बादर निगोद वर्गणा हीन और अधिक उपलब्ध होती, क्योंकि वहाँ जितनी संख्या थी क्षीण कषाय हमने नीचे नीचे उतर के आए हैं, जहाँ विशेष अधिक मरण होता था वहाँ जितनी वर्गणा पाई जाती, जितनी पुद्गल संख्या, उतनी हीन में भी पाई जाती है, किसी में हीन भी होती है और सदृश भी होती है, हीन अधिक भी उसमें पाई जाती है, क्योंकि हमको एक एक अधिक से बताना है ना आगे, इसलिए अभी इनमें घटाएंगे वो बात। पुनः इसके सदृश वर्गणा को ग्रहण कर, सदृश वर्गणा क्यों ग्रहण करने, क्योंकि अभी एक परमाणु और बढ़ा के दिखाएंगे, दो परमाणु बढ़ा के दिखाएंगे, इसलिए सदृश वर्गणा बताई। वहां मूल थुअर और आर्द्रक आदिक में एक औदारिक विसर्गोपचय परमाणु बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। अभी उसमें विसर्गोपचय की संख्या एक एक से बढ़ा रहे हैं, दो परमाणुओं के बढ़ने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार अनंत अनंत विसर्गोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर पूर्व विधि से अनंतर एक औदारिक परमाणु विसर्गोपचय सहित बढ़ाना चाहिए, एक औदारिक परमाणु यहाँ पर बढ़ाएंगे। इस प्रकार विसर्गोपचय सहित औदारिक शरीर परमाणु अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग मात्र होने तक बढ़ाने चाहिए। यानी एक एक औदारिक परमाणु बढ़ाएंगे, फिर विसर्गोपचय एक एक से बढ़ाएंगे, फिर औदारिक परमाणु बढ़ाएंगे, इस तरह से। पुनः इसी क्रम से अनंतानंत विसर्गोपचय सहित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग मात्र तेजस शरीर परमाणु बढ़ाने चाहिए। अभी उसमें शॉर्ट में बता दिया, जब औदारिक की लिमिट हो जाती है तब तेजस के विसर्गोपचय में एक एक बढ़ाना, और फिर तेजस में बढ़ाना, तेजस शरीर के परमाणु में। पुनः पूर्व विधि से कारमाण, वो बीच में न नहीं छपा है, पूर्वोक्त विधि से कारमाण शरीर पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे विसर्गोपचय सहित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग मात्र कर्म परमाणु बढ़ाने चाहिए। यानी कारमाण के जो दो पुंज है उसमें भी इसी विधि से बढ़ाना है। इस प्रकार पूर्व विधि से एक जीव प्रविष्ट कराना चाहिए, यानी एक एक्स्ट्रा बादर निगोद जीव उसमें और एक्स्ट्रा ले लेना। पुनः उसी के औदारिक तेजस और कारमाण शरीर बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर ये बढ़ाते हुए एक एक पुद्गल परमाणु बढ़े, इस विधि से बढ़ाने चाहिए। बढ़ाने पर अनंतानंतर बादर निगोद जीवों के प्रविष्ट होने तक, क्या कहा, कितने जीव प्रविष्ट कराने चाहिए? देखो, हम क्षीण कषाय में जब देखते थे एक एक समय वाले पल्ले के असंख्यात विभाग इतने जीव वहाँ प्रविष्ट कराते थे, एक विशिष्ट समय, विवक्षित समय में, अंतिम समय हो या उपांत समय हो या त्रिचरम हो चतुर्थ समय हो। परंतु यहाँ अभी क्या है, अभी जीव कितने बढ़ेंगे, अनंतानंत बादर निगोद जीवों के प्रविष्ट होने तक, होने पर, सॉरी, इस प्रकार बढ़ाने पर अनंतानंत बादर निगोद जीवों के प्रविष्ट होने पर एक निगोद साधारण शरीर प्रविष्ट होता है। नहीं समझे? पहले में पहले एक एक परमाणु बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते फिर जब लिमिट हो गई छह पुंजों की, तब एक जीव बढ़ाया, एक जीव बढ़ाया, फिर परमाणु परमाणु बढ़ाते बढ़ाते फिर पूरा वो छह के छह पुंज बढ़ाए, फिर और एक जीव बढ़ाया, ऐसे कितने जीव बढ़ाए, अनंतानंत, जितने एक निगोद शरीर में पाए जाते उतने जीव बढ़ाए। तो उनकी लिमिट पूरी हुई तब एक निगोद शरीर बढ़ाया। क्योंकि हमने देखा था ना, तो एक पुलवी में कितने शरीर है, असंख्यात लोक प्रमाण तो निगोद शरीर है, अब उसमें एक शरीर एक्स्ट्रा किया और उस शरीर में फिर वो अनंत अनंत निगोद बढ़ाएंगे। हाँ, पूर्व विधि से, यानी जो हमने देखे थे सारे छह पुंजों की बात, एक जीव प्रविष्ट करना चाहिए। नहीं, ये होंगे ना अपना अनंतानंत बादर निगोद जीवों के प्रविष्ट होने पर, यह पढ़ रही थी, एक निगोद साधारण शरीर प्रविष्ट होता है। अब एक शरीर प्रविष्ट किया, फिर एक 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 जीव बढ़ाओ, अनंतानंत हो जाएगी तो और दूसरा शरीर बढ़ाओ, फिर अनंतानंत जीव हो जाएंगे तो तीसरा शरीर बढ़ाओ। इस प्रकार कितने असंख्यात लोक मात्र शरीरों के प्रविष्ट होने पर एक पुलवी प्रविष्ट होती है। पुलवी को प्रविष्ट किया अभी, पुनः विश्रसोपचय सहित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग मात्र औदारिक तेजस और कार्मण शरीर परमाणु पुद्गलों के बढ़ाने पर एक जीव प्रविष्ट होता है। एक पुलवी बढ़ाने पर फिर एक जीव प्रविष्ट किया, फिर एक निगोद वो अनंतानंत ऐसे जीव प्रविष्ट होने पर एक निगोद शरीर प्रविष्ट होगा और असंख्यात लोक इतने शरीर होने पर एक पुलवी हो जाएगी। इस प्रकार अनंतानंत जीवों के प्रविष्ट होने पर एक साधारण शरीर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों के प्रविष्ट होने पर दूसरी पुलवी प्रविष्ट होती है। ये अनंत की पता नहीं ना क्या है और वो भी कौन सा अनंत है। हाँ, इस प्रकार तीसरी चौथी और पांचवी आदि से लेकर कितनी पुलवियां प्रविष्ट करना, जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलवियों की वृद्धि होने पर कर्मभूमि प्रतिभाग स्वयं ब्रह्मण द्वीप की मूली के शरीर में एक बंधनबद्ध जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलवियों को ग्रहण कर, अभी हमने क्षीण कषाय में कितने देखे थे पुलवियां, आवली के असंख्यात वे भाग, एट एनी गिवन पॉइंट जगन्य हो या उत्कृष्ट हो आवली के असंख्यात वे भाग थे, पुलवियों की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ मूली में बढ़ाते बढ़ाते कितनी बढ़ाई हो गई, श्रेणी के असंख्यात वे भाग पुलवियां हो जाएंगी। एक बंधन बद्ध, ये महत्व की बात है। उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा होती है, अपने जघन्य से उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा असंख्यात गुणी है। मूली में जो जघन्य पाई थी उससे मूली में जो उत्कृष्ट है तो उसको असंख्यात गुणा कहते हैं। तो गुणकार क्या है, जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण गुणकार है। कितने ही आचार्य गुणकार आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण होता है ऐसा कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में निगोदों का यानी पुलवियों का प्रमाण, जब निगोद कहते हैं तब यहाँ पुलवियों को ही निगोद कह के बताया उपचार, उसका प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र है, इस चूलिका सूत्र के साथ विरोध आता है। और सूत्र विरुद्ध आचार्यों का वचन प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर अति प्रसंग दोष आता है। निगोद शब्द पुलवियों का वाचक है ऐसा ग्रहण करके यह प्ररूपणा की गई है। ये जो कितने श्रेणी के असंख्यात विभाग होते हैं, इतनी पुलवियां बढ़ती चली जाती है, ये निगोद जीवों का आश्रय किया नहीं है, पुलवियों का आश्रय है। जैसे हमने क्षीण कषाय में देखा था ना कि पुलवियां जो है वो असंख्यात गुणा बढ़ती है, ऐसा देखा था उसमें। यह जगत श्री वो अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण पुलवी होती, इतना ही वहां कहा था। अब बादर निगोद वगणाय जहन्याय आवलियाय असंख्य जदि भाग मित्तो निगोदानम, इस चूलिका सूत्र का कितने ही आचार्य इस प्रकार व्याख्यान करते हैं, यथा निगोदानम ऐसा कहने पर उसका अर्थ निगोद जीव लेते हैं, पुलविया नहीं। आवलियाय असंख्य जदि भाग मित्तो ऐसा कहने पर घनावली के असंख्यात वे भाग प्रमाण गुणकार होता है ऐसा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक शरीर उत्कृष्ट वर्गणा को घनावली के असंख्यात वे भाग से गुणित करने पर जघन्य बादर निगोद वर्गणा होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। किंतु यह व्याख्यान घटित नहीं होता, क्योंकि सुहमणिगोद वगणाय जहन्याय आवलियाय असंख्य जदि भाग मेत्तो निगोदानम, यहाँ भी घनावली के असंख्यात वे भाग से उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा के गुणित करने पर जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। यानी यहाँ यदि हम वो रूल अप्लाई करेंगे कि प्रत्येक निगोद वर्गणा प्रत्येक शरीर वर्गणा से वो इतने गुणा है, तो वही रूल होगा बादर निगोद वर्गणा से वो सूक्ष्म निगोद वर्गणा में भी वैसा ही गुणकार करना पड़ेगा। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि गुणकार अंगुल के वो बराबर करना, वो ग लगाए ना उसके नीचे ग लिखना चाहिए, ग ऑर्डिनरी ग, और फिर बाद में उकार देना है उसके बदले, अ के ऊपर बिंदी लगाओ और रेगुलर ग को उकार करके गु करना अंगुल। यहाँ जो लिखना है ना ये तो ये आधा हुआ और उसके नीचे ये पूरा ग, ये अंगुल ऐसा होना चाहिए यदि उसको रखना है तो, क्योंकि अनुस्वार के बदले ही आए ना क ख ग घ ग, क ख ग घ के पहले बिंदी आती है तो उसको इस तरह से करना है, फिर बिंदी नहीं करनी, बिंदी के बदले वो है। अभी अ के ऊपर बिंदी लगा और सादा ग करो तो चलेगा। अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाणे ऐसा आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश के बल से सिद्ध है। अथवा आवलिया असंख्य यदि भाग में तो निगोदानम, इस प्रकार यहाँ पर निगोद शब्द अंडरों और आवासकों का वाचक लेना चाहिए। अंडर आवास ऐसे हम देखते ना अलग अलग ये, क्योंकि ऐसा ग्रहण किए बिना उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में एक बंधनबद्ध असंख्यात लोकमात्र पुलविया पाई जाती है यह व्याख्यान बन नहीं सकता। ये आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण क्या लेने चाहिए, आवास आदि अंडर, क्योंकि पुलविया असंख्यात लोक मात्र है ये सिद्ध होनी चाहिए इसलिए। और स्कंदों के ये दूसरे व्याख्यान में क्या क्या बातें होती है और वहां क्या लेना चाहिए वो बात स्पष्ट कर रहे हैं। और स्कंदों के अवयव रूप, अवयव स्वरूप रस रुधिर तथा मांस रूप अंडरों का, देखो रस रुधिर मांस ये जो शरीर के जो अवयव है ना उसको स्कंद के अवयव कहा, स्कंद ने पूरा अभी एक शरीर हम उसको स्कंद कहेंगे और उसके ये अवयव है, हमने देखा ना स्कंद अंडर आवास पुलवी और देह, उससे पृथक रूप से अवस्थान पाया नहीं जाता जिससे एक स्कंद में अनेक बंधनबद्ध असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियों की संभावना होवे, इसलिए यही अर्थ प्रधान है ऐसा ग्रहणा ग्रहण करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा मात्रा हो गई उसको, इस अर्थ के ग्रहण करने पर अकषाय गुणश्रेणी मरण काल का उक्त गुणकार विरोध को प्राप्त नहीं होता। ये अकषाय गुणश्रेणी मरण किसको कहते हैं? हाँ देवेंद्र भाई, आप क्या कह दे कल पूरा दिन हमने जो पढ़ा है गुणश्रेणी मरण का अर्थ क्या होता है, असंख्यात गुणा प्रमाण में जो निगोद जीवों का मरण होता है उसको असंख्यात यानी गुणश्रेणी मरण कहा। क्षीण कषाय गुणस्थान में जीव प्रवेश करता है तो शुरू में जो पहले समय में अनंत निगोद राशि चली जाती है, निगोद जीव अनंत मरते हैं, दूसरे समय में असंख्यात भाग से अधिक है तो अनंत परंतु असंख्यात भाग अधिक मरते, तीसरे समय फिर अधिक मरते, चौथे समय अधिक मरते, ऐसे विशेष अधिक कितने ही काल तक मरते हैं। और जब एक आवली का असंख्यात भाग शेष रहता है क्षीण कषाय गुणस्थान में तब प्रत्येक समय में असंख्यात गुणे मरते गुणित प्रमाण में, उसको यहाँ गुणश्रेणी मरण कहा, निगोदों के मरण की बात है। और अकषाय ने वो क्षीण कषाय वाले में ऐसी बात होती है इसलिए उसको अकषाय कहा। तो उक्त गुणकार विरोध को प्राप्त नहीं होता क्योंकि असंख्यात गुणित क्रम से मृत जीवों से अवशिष्ट रहे आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण निगोदों में भी असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया उपलब्ध होती है, इस प्रकार यह 19वीं वर्गणा कही गई है। देखो हमें यहाँ वर्गणा का प्रकरण अपना चल रहा है, आपको पता है प्रत्येक शरीर वर्गणा किसे कहते हैं और बादर निगोद वर्गणा किसे कहते हैं? देखो हमने पहले से शुरू किया था, आप अभी आए ना आज, तो एक सिंगल परमाणु उसको क्या कहा था, परमाणु वर्गणा को, एक एक प्रदेशी वर्गणा को, परमाणु वर्गणा कहा था उसको, फिर द्विप्रदेशी वर्गणा, त्रिन प्रदेशी वर्गणा, इसे संख्यात प्रदेशी वर्गणा कहा। उत्कृष्ट संख्यात तक उसको संख्यात प्रदेशी वर्गणा कहेंगे, उसके बाद असंख्यात परमाणुओं का जो ग्रुप है, समूह है, उसको असंख्यात प्रदेशी वर्गणा, उसके बाद अनंत प्रदेशी वर्गणा देखी हमने, उसके बाद आहार वर्गणा। आहार वर्गणा के बाद देखो जो पांच ग्राह्य वर्गणा है ना जीव के द्वारा ग्रहण की जाती है, उसके बीच में अंतराल में जो जो है उसको अग्रहण, हाँ अग्रहण वर्गणा कहते हैं, अग्राह्य वर्गणा, अग्रहण वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा। ये चार अंतराल, जो चार अंतराल है पांच उसमें, तो उसका नाम है अग्रहण वर्गणा। देखो 62 पेज पर है, 63 पेज पर भी है अग्रहण वर्गणा, है ना अग्रहण वर्गणा। तो आहार वर्गणा, फिर अग्रहण वर्गणा, उसके बाद तेजस वर्गणा, फिर अग्रहण वर्गणा, भाषा वर्गणा, फिर अग्रहण वर्गणा, मनोवर्गणा, फिर अग्रहण वर्गणा, फिर कारमाण वर्गणा, फिर अग्रहण वर्गणा, उसके बाद शांतर निरंतर आई थी ना, कौन सी आई थी, शांतर निरंतर वर्गणा आई थी। शांतर निरंतर के बाद ध्रुव शून्य वर्गणा आई थी। ध्रुव शून्य वर्गणा यानी वहां तो प्रमाण तो बतलाया, इतने अनंत से लेकर इतने तक, ये सारे ध्रुव शून्य वर्गणा कहलाएंगे। ऐसे ध्रुव शून्य वर्गणा भी एक से ज्यादा है, हमने अभी देखना चालू किए ना, तो उसका अर्थ क्या है, वहां ऐसे कोई एग्जिस्टिंग है ही नहीं है परमाणु, उस ग्रुप वाली वर्गणाएं इस विश्व में एग्जिस्टिंग नहीं है, फिर भी उसकी रेंज बताने के लिए उसको वहां ध्रुव शून्य वर्गणा नाम दिया है, वो अस्थिर स्वरूप नहीं है। उसके बाद हमने देखा था प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, नहीं ये देखो ना 65 पेज पर ध्रुव शून्य वर्गणा, उसमें बीच में भी आती है फिर, हाँ तो शांतर की निरंतर के बाद, ये देखो 65 पेज पर शांतर निरंतर के बाद ध्रुव शून्य वर्गणा आई थी, ध्रुव शून्य के बाद प्रत्येक शरीर वर्गणा आई थी। अब प्रत्येक शरीर वर्गणा किसको कहना, प्रत्येक शरीर तो हम कहते हैं जिसका एक जीव स्वामी उसको प्रत्येक शरीर कहते हैं, परंतु प्रत्येक शरीर वर्गणा किसको कहते हैं कि जिसके मात्र प्रत्येक शरीर है, जिस प्रत्येक शरीर के आधार से निगोद रहते नहीं है, ऐसे शरीरों की जो वर्गणा है उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा। तो उसमें कौन कौन से है, तो एट ए टाइम अभी हम देखे, औदारिक में तो सभी जगह हम निगोद पाए जाते हैं, तो ऐसे कोई औदारिक शरीर है कि जहाँ निगोद नहीं है, हाँ केवली का शरीर, केवली का शरीर, तो उसको भी वहां ये प्रत्येक शरीर वर्गणा का। और अभी औदारिक की बात छोड़ो, या औदारिक में भी और कोई है, औदारिक शरीर की बात थी, हाँ स्थार, चार स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, प्रत्येक वनस्पति को भी लिया है जो अप्रतिष्ठित है, परंतु वो उसको मेंशन किया खाली, मुख्य रूप से जो आठ जो पाए जाते हैं ना, जहाँ निगोद नहीं पाए जाते हैं, ऐसे आठ बातें बताई, आठ शरीर बताए। एक तो ये पांच चार स्थावर केवली, आहारक शरीर, और देव और नारकी, तो इनके जो अभी जो देव नारकी जो है उनके वैक्रेक तेजस और कारमाण, इनका जो एक बंधन बंधन रूप जो वर्गणा पाई जाती है, स्कंद पाया जाता है, उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा। फिर उसमें कितने, किसको कम होती है किसको ज्यादा होती है, उसकी बात की थी। अब संयोग केवली से बात की थी ना हमने, अयोग केवली से अंतिम समय, अयोग केवली का अंतिम समय, वहां जघन्य में जघन्य बादर निगोद वर्गणा पाई जाए, सॉरी प्रत्येक शरीर वर्गणा पाई जाएगी। बादर निगोद का बात चलते चलते वही हो गए ना, फिर उसमें भी एक एक परमाणु किसके ज्यादा होती है वहां बात की थी। अयोगी के एक एक समय नीचे उतरकर हम सयोगी के पहले समय तक आए थे, वहां तक बादर निगोद वर्गणा घटित किए थे, हाँ। और उसके बाद ये जो एक जीव की अपेक्षा वो बात हुई, स्थावर जीवों में अनेक जीवों का समूह रूप से वो एक बंधन में बद्ध है, उसको भी वहां प्रत्येक शरीर वर्गणा कह दी। अनेक जीवों का मिलकर जो असंख्यात जीव इकट्ठे वहां पाए जाते हैं, तो उसमें भी उन्होंने घटित करके दिखाए। और इन बिटवीन वो तो मैक्सिमम किसको हो सकती है प्रत्येक शरीर वर्गना? हाँ, सातवीं पृथ्वी का नारकी अंतिम समय वाला, और उसमें भी गुणित कर्मांशिक रूप से आया। तो क्योंकि उसके कारमान की मैक्सिमम मेजोरिटी है ना, तेजस कारमान उसके ज्यादा है। ये तो प्रत्येक शरीर वर्गना हुई, उसके बाद फिर ध्रुव शून्य वर्गना है, और अभी जो हम देख रहे तो बादर निगोद वर्गना। तो बादर निगोद वर्गना किसको कहना? तो जिन शरीरों के आधार से बादर निगोद जीव रहते हैं, तो उस ओरिजिनल जीव के तो औदारिक तेजस कारमान है ही है, ये अनंतानंत निगोद जीवों के भी वहाँ तेजस कारमान, और उनके जो यथायोग्य जितने शरीर हो गए, जीव तो अनंत है परंतु शरीर तो असंख्यात हो गए निगोदों के। निगोद शरीर असंख्यात है और जीव अनंत है, एक एक शरीर में अनंत है। तो वो सबका मिलकर एक बंधन बद्ध कहा और उसको बादर निगोद वर्गना कहा। तो ये बादर निगोद वर्गना भी जघन्य में जघन्य किसके होती है? तो क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में, क्योंकि वहां तक बादर निगोद पाए जाते हैं, और वहां से हम अधिक किसको होती है वो सारा घटित किया था, उल्टे क्रम से आए थे। क्षीण कषाय का कितना ही काल नीचे उतर कर आए, फिर वैसे ही सदृश सिमिलर ये जो स्वयं भ्रमण द्वीप में आउटर साइड में मूली थोर आदि पाए जाते हैं, लताएं उसमें जो वहां निगोद पाए जाते हैं, वहां पर ये सिमिलर हमने देखा था। कौन से? क्षीण कषाय के जीव के समान वहां भी पाए जाते हैं। उतरते हम नीचे आए ना उल्टे क्रम से, फिर उसमें बढ़ाते बढ़ाते अभी देख रहे हैं। तो उसमें उत्कृष्ट रूप से किसको होता है? अभी वो बादर निगोद वर्गना की बात आई, ये हम यहाँ आए ना, और उसी की चर्चा अभी चल रही थी 112 पृष्ठ पर, कि अन्य आचार्य अन्य अपेक्षा से बढ़ाते हैं या कथन करते हैं, तो उसका कहाँ कथन घटित होता है और कौन सी अपेक्षा लेंगे तो घटित होता है, उसकी चर्चा की। अब हम आगे का सूत्र पढ़ेंगे 64 नंबर का। यानी यहाँ कहाँ घटित हुआ है बादर निगोद वर्गना वाला? वो मूली में घटित हुआ ना उत्कृष्ट। पहले इसका भी महामत्स्य का भी नाम आया था ना कि नहीं आया था? जब हमें स्टार्टिंग में उस मूली थुअर वगैरह हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण पूर्वीय कहाँ होती है, 98 पेज पर लिखा था। यानी अधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलविया कहाँ होती है? हाँ, पहले 98 पर सुनो, मैं जो दिखा रही ना वो पढ़ के हम आपके पेज पर आएंगे। फिर देखो, शंका पूछी थी नीचे की शंका 98 पर, नीचे की शंका क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया कहाँ पर होती है? क्योंकि पुलवियों की संख्या हमने तो क्षीण कषाय गुणस्थान में तो अवली के असंख्यात विभाग देखी थी, तो ये असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया कहाँ होती है? तो कहते हैं मूली महामत्स्य थुअर लतादि उसमें होती है। हाँ, अभी आप जो कहना चाहते हैं 97 पेज पर, 97 पेज पर क्या है? 117 पेज आगे की बात। हाँ, वो तो हम देखेंगे, वहां ध्रुव शून्य उसकी बात नहीं, यहाँ पर महास्कंद अलग बात है। महास्कंद की बात क्यों नहीं है? मत्स्य में महास्कंद नहीं होती, आप कुछ घोटाला कर रहे हैं। वो तो सूक्ष्म निगोद वर्गना आएगी उसमें, वो बादर निगोद वर्गना में नहीं लिया, सूक्ष्म निगोद वर्गना में लिया उसको। हाँ, वो बात अलग है। यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया कहाँ पाई जाती? तो महामत्स्य वगैरह के शरीरों में पाई जाती है। अब यहाँ तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मूली थोर वगैरह उसमें घटित किया है, आदि में वो जो यथायोग्य है उस सबको समझ लेना। अब यहाँ हम देखते हैं 64 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। क्या सूत्र का नंबर 94 है? कहाँ पर? ओहो हो, हाँ मैंने 64 पढ़ा, हाँ 94 लिखा है। हाँ अच्छा किया, अभी सभी स्पेशलिस्ट हो गए हैं, अच्छा है ना। ए 94 करो अच्छी बात है, पढ़ते समय ऐसे बराबर चौकन्ना होकर पढ़ना चाहिए। 94 पढ़ेंगे। बादर निगोद दव्व वग्गणाणम उवरी ध्वसुन्न दव्व वग्गणाणामम। बादर निगोद वर्गणाओं के ऊपर ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। बादर निगोद की हमने जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक एक एक परमाणु से बढ़ते हुए इतने स्थान देखे हैं, इतने भेद देखे हैं, उसमें बीच में गैप नहीं होती है। और उसके ऊपर ये अभी बताएंगे, ये जो रेंज बताएंगे उसको कहेंगे ध्रुव शून्य वर्गणा। ये एग्जिस्टिंग नहीं होती है, जहां जहां ध्रुव शून्य नाम आया है तो ये है ही नहीं अस्तित्व में, फिर भी वो रेंज बताने के लिए उसको नाम दिया ध्रुव शून्य वर्गणा। उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर तीसरी ध्रुव शून्य वर्गणा की सबसे जघन्य ध्रुव शून्य वर्गणा होती है। ये तीसरे नंबर की जो ध्रुव शून्य वर्गणा है उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम, जघन्य और उत्कृष्ट दो उसकी रेंज बताएंगे, और उसके बाद आगे वाली वर्गणा आएगी। पुनः इसके ऊपर प्रदेश अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर तीसरी ध्रुव शून्य वर्गणा की सबसे उत्कृष्ट वर्गणा होती है। अपनी जघन्य से उत्कृष्ट वर्गणा असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? अंगुल के, यहां भी वो ग लगाया नहीं उन्होंने, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार है। शंका, उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण पुलविया होती है, अभी हमने पढ़ा था ना ये। जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलविया होती है, इसलिए उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा से नीचे सूक्ष्म निगोद जघन्य वर्गणा अंतर के बिना होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ये ध्रुव शून्य वर्गणा वाला जो अंतर बीच में कहा वो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अभी अभी हमने जो बादर उत्कृष्ट निगोद वर्गणा देखी थी उसमें पुलवियों का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग देखा था, और जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण पुलविया है, कम है ना उसमें, तो वो उसके साथ वो पुनरुक्त में कहीं पर आना चाहिए था, तो बीच में ये गैप वाली बात की तो वो नहीं घटित होती। समाधान, यह उक्त शंका का परिहार करते, यानी ये शंका कैसे बराबर नहीं है उसकी बात करेंगे। बादर निगोद उत्कृष्ट वर्गणा की जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र पुलवियों में स्थित जीवों से, अब जीवों की संख्या ले रहे हैं, वहां पुलवियों की संख्या भले जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है, उसमें जितने निगोद जीव रहते हैं उनसे सूक्ष्म निगोद जघन्य वर्गणा की आवली के असंख्यात भाग मात्र पुलवियों में स्थित जीव असंख्यात गुणे होते हैं। कल आप बादर की बात देखकर ये हो गए ना, अब यहाँ जीवों का प्रमाण और ज्यादा है, असंख्यात गुणा है, यानी पुलवियों की संख्या सूक्ष्म में कम होने पर भी एक एक पुलवी में जीवों का प्रमाण असंख्यात गुणा है। क्योंकि बादर निगोद वर्गणा के शरीरों से सूक्ष्म निगोद वर्गणा के शरीरों का गुणकार अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण पाया जाता है। ये अंगुल बराबर करना है, देह की बात, एक पुलवी टू पुलवी कंपेयर कर रहे हैं। देखो एक पुलवी में असंख्यात देह होते हैं, अभी वो कौन सा श्रेणी का असंख्यात भाग है क्या अवली के, उसकी बात अभी, वो असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। एक एक पुलवी में देहों की संख्या यानी निगोद शरीरों की संख्या, ये जो यहाँ जो प्रमाण बता रहे हैं वो पुलवियों का प्रमाण बता रहे हैं।
तो हमने देखा है कि कोई भी शरीर
उसका अपना शरीर है कि नहीं? सूक्ष्म जीव आपके हमारे शरीर के आधार से नहीं है, उसका अपना शरीर है ना। सूक्ष्म निगोद का उनका अपना शरीर है कि नहीं, जिसको हम कहते एक शरीर में अनंत जीव, वो अनंत में मिलकर एक औदारिक शरीर तो है कि नहीं है? उस शरीर की बात कर रहे हैं। नहीं, वो बराबर है, हमारे आपके शरीर के आधार से वो नहीं रहेंगे, उनके आधार की जरूरत नहीं है, बराबर। परंतु वे शरीर सहित है कि शरीर रहित है? शरीर सहित है। तो एक पुलवी में ऐसे कितने निगोद के शरीर पुलवी में, जैसे आपका, हाँ ऐसा लग रहा है, ये जो स्कंद अंडर वगैरह बात है ना, वो तो उसमें भी घटित हो गए, उनमें भी घटित हो गए। क्यों, किसको कहना स्कंद वगैरह? उनका भी जो एक बंधन बद्ध है, जैसे हमने देखा था अग्नि का एक जीवों का समूह है, सबका मिलकर एक बंधन कहा, वैसे सूक्ष्म निगोद भले दूसरे प्रत्येक शरीर के आधार से नहीं है, परंतु उनके शरीरों का भी मिलकर जो ग्रुप हो गया है, उसी को तो पुलवी कहा। पुलवी किसको कहा? देहों के समूह को। पुलवियों के समूह उल्टा जा रहे हैं अभी हम, पुलवियों के समूह को क्या कहेंगे? आवास कहेंगे। आवासों के समूह को अंडर कहेंगे। अंडरों के समूह को स्कंद कहेंगे। ऐसे स्कंद जो इस संबंधी स्कंद है वो पाए जाएंगे सर्वत्र। यानी वो सर्वत्र पाए जाए, जल में भी हो गए, स्थल में भी, वायु में, यानी आकाश में भी हो गए, और वो इस शरीर के भी है ना, यहाँ पर भी उनके तो स्पेस में है, जहाँ हम हमारे ये रहना होता है वहाँ पर उनका भी रहना होगा कि नहीं? उनके भी अपने स्कंद अंडर आवास हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, यानी उनके भी स्कंद होते हैं, परंतु वो अपने अपने शरीर के आधार से नहीं है, उनकी भी पुलवियां हैं। हाँ, यानी जैसे उनके देहों का जो ग्रुप है उसको पुलवी कहेंगे, पुलवियों के ग्रुप को आवास कहेंगे, आवासों के ग्रुप को अंडर कहेंगे, अंडरों के ग्रुप को स्कंद कहेंगे। सूक्ष्म निगोद में भी हमने पहले जो मादर निगोद देखे थे उसमें तो प्रत्येक शरीर के आधार से वे रह रहे थे, और उसमें भी पूरा एक प्रत्येक शरीर है, उसमें भी उसके उसके अपने अपने स्कंद अंडर वगैरह थे। वैसे सूक्ष्म निगोदों के भी अपने अपने स्कंद अंडर आवास पुलवी और निगोद देह होते हैं, फिर एक एक शरीर के आधार से इतने इतने जीव होते हैं। वही बात अभी अभी आप समझेंगे। देखो
ये
देह को पुलवी नहीं कहा, देहों के समूह को पुलवी कहा। देखो देखो, पहले हमने जैसे देखे थे एक स्कंद किसको कहना, जैसे एक भारत देश है तो वो स्कंद कहेंगे हम, और उसके अभी अलग अलग महाराष्ट्र गुजरात वगैरह जो है प्रांत है तो उसको हमने कहा वो अंडर है। अभी उसमें जो आवास है ने भी थोड़े छोटे छोटे जिले कर दिए हम, तो ये आवास हो गए। अभी उसमें भी शहर अलग अलग है, वो पुलवी होगी, और उसमें प्रत्येक एक एक घर अलग अलग, वो देह, उसको देह कहा। अब एक एक देह में अनंत जीव रहते हैं, तो ये असंख्यात लोक प्रमाण तो स्कंद है, एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद के देह है, देह, और एक एक देह में अनंत अनंत जीव है। कितने अनंत अनंत? सिद्धों से भी अनंत गुणे। तो यही कथन बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद दोनों के लिए होगा। तो सूक्ष्म निगोदों के शरीर का जो समूह है जिसको हम पुलवी कहते हैं, इकट्ठे जो शरीर पाए जाते हैं, असंख्यात शरीर इकट्ठे पाए जाते हैं, हमने देखा ना वो सुई के नोक के जितना आकाश का प्रदेश होगा। पहले तो हम बादर निगोद समझाते हुए क्या कहते, सुई के नोक के ऊपर जितना बटाटा का टुकड़ा आएगा उसमें इतने इतने हो, अभी सूक्ष्म को समझाना है तो क्या कहेंगे, इस सुई के नोक के ऊपर जो प्रदेश है उतने क्षेत्र में सूक्ष्म निगोद कितने पाए जाएंगे, तो उसमें ये सारे अंडर पुल भी सब सब उसमें आ जाएंगे। असंख्यात प्रदेश व्याप्ता है परंतु उनकी अवगाहना देहों की अवगाहना है ना। निगोद का एक देह कितना है तो हम आवली के असंख्यात भाग देखते हैं ना, जघन्य अवगाहना के जो हमने शुरू किए थे, चौसर अवगाहना के भेद देखे थे ना, उसमें जघन्य में जघन्य किसका था, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, फिर एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अवगाहना के अनेक विकल्प, असंख्यात गुणा फिर वो निवा वायु का एक का जघन्य अवगाहना आई थी, फिर तेजो का एक की जघन्य अवगाहना आई थी, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए, तो वहां निगोदों की भी अवगाहना चल ही रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जो एक शरीर दो शरीर तीन शरीर वो इकट्ठे रहते हैं, ग्रुप शरीर और शरीर उनका एक बंधन पाया जाता है, वो सब परमाणु इकट्ठे हैं, जैसे औदारिक शरीर को चिपके हुए वो विश्रोसोपच है, वैसे वो अनेक औदारिक शरीर इकट्ठे रहते हैं और उसका सबका मिलकर भी एक विश्रोसोपच तैयार होता है, एक पूरा उसका वर्गणा कहलाती है, उसको सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहेंगे। एक जीव नहीं, देखो जीव, हाँ जीव असंख्यात गुण है, पुलवी असंख्यात गुण है, पुलवी असंख्यात गुण है, तो देह हाँ हाँ वो तो अनंत में ही होते हैं ना, जीव भी अनंत होगी वहां पर, ये भी अनंत है वो भी अनंत है, उसको असंख्यात गुणा भी कर सकते हैं हम। देखो ये फिर पढ़ते हैं हम, शंका फिर पढ़ते हैं, उसका समाधान, बादर निगोद उत्कृष्ट वर्गणा की जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र पुलवियों में स्थित जीवों से, यानी सभी पुलवियों में, एक एक पुलवी में स्थित जीवों से नहीं कहा, मैक्सिमम वहां पुलवी कितनी है, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, उसमें जितने जीव है टोटल नंबर, उससे सूक्ष्म निगोद जघन्य वर्गणा की आवली के असंख्यात भाग मात्र पुलवियों में स्थित जीव असंख्यात गुणे, जीव ही असंख्यात गुणे कहा है, वहां पुलवी ज्यादा थी यहाँ पुलवी कम है, फिर भी जीव असंख्यात गुणे हैं। स्कंद ने यहाँ पुलवी ले, नंबर ऑफ वहां पुलविया ज्यादा है, मान लेते कि वहां 1,00,000 पुलविया है और इनके पास 50,000 पुलविया है, मान लेते हैं, अच्छा अच्छा 10,000 करो उसको, हाँ 10,000 करो फिर भी जीवों की संख्या असंख्यात गुणा है। नहीं नहीं नहीं, बादर निगोद उत्कृष्ट वर्गणा कहाँ देखी हमने, अभी अभी हमने मूली थुअर वगैरह में देखे, उसमें पुलविया का प्रमाण कितना देखा था, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग अभी अभी पढ़ा ना, देखो नहीं नहीं नहीं, सर्वत्र असंख्यात लोक नहीं, वो कहाँ पाया जाता है उसकी बात हमने देखी थी, मैक्सिमम कहाँ पाए जाते असंख्यात लोक, वहां वो नहीं ली थी उन्होंने, देखो यहाँ पर 111 पृष्ठ पर ऊपर से पांचवी लाइन, अपनी जघन्य से उत्कृष्ट कितने गुना है वो लिया था उन्होंने, देखो स्कंद में मैक्सिमम पॉसिबल असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होती है, हाँ पुलवियों की संख्या, पर वो एक बंधनबद्ध होता हो गए तभी उसको बादर निगोद वर्गणा कहेंगे, एक बंधनबद्ध होना अलग बात है और वहां कितनी पाई जाती है वो अलग बात है। नहीं समझे कि हमारे पूरे अभी कैसा ये आंवले या वो एक साथ बंच में कौन से फ्रूट्स पाए जाएंगे ऐसा लेंगे, बेरी बेरी कहेंगे या द्राक्ष कहेंगे, तो द्राक्ष का एक एक बंच है। तो हमने एक पूरा खोखा लाया, डब्बा लाया, पेटी लाया, तो उसमें वो बंच कितने थे, तो बंच मान लेते 20 थे, और एक एक बंच में अलग अलग वो कितने हैं, पूरे पेटी में कितने द्राक्ष आएंगे, हाँ भले आप 500 कहेंगे, हाँ 500 कहेंगे, परंतु वो बंच कितने थे, तो 20-25 ही बंच थे, ऐसे यहां समझ लेना। एक बंधन बद्ध में उसको लेना है। तो जहां बादर उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में पुलवी कितनी पाई जाती है, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, अभी देखा ना यहां पर, ये 111 पृष्ठ पर पढ़ा हमने। अब यहां इतनी पुलवी है, उसमें जितने जीव होंगे, अब आगे अभी हम ये पढ़ रहे सूक्ष्म निगोद वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा में पुलवियों की संख्या कम बताई है परंतु जीवों की संख्या ज्यादा है। उसका कारण क्या बताते, देखो जीव असंख्यात गुण है, तीसरी लाइन यानी इस पृष्ठ की छठी लाइन, क्योंकि 113 पृष्ठ पर छठी लाइन पर, छठी नहीं छठा दो आठ लाइन समाधान की तीसरी लाइन के अंत में आए, क्योंकि कारण मध्य बता रहे, बादर निगोद वर्गणा के शरीरों से, वर्गणा वाले शरीर लिए, बादर निगोद वर्गणा के शरीरों से सूक्ष्म निगोद वर्गणा के शरीरों का गुणकार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण पाया जाता है, यानी वहां शरीर ज्यादा पाए जाते हैं, अथवा वहां रहने वाले जीवों से यहां रहने वाले जीवों का गुणकार अंगुल के बराबर करना असंख्यातवे भाग प्रमाण उपलब्ध होता है। यानी जीव असंख्यात गुणा है, कितने असंख्यात गुणा है, अंगुल के असंख्यातवे भाग वाला जो असंख्यात है उतने गुणा है। पुलवी, हाँ बादर निगोद वर्गणा में, कौन सी बादर निगोद, उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण पुलविया हैं, और जघन्य बाद जघन्य ने सूक्ष्म निगोद वर्गणा की जघन्य लेना, उसमें पुलवियों का प्रमाण आवली का असंख्यात भाग है, फिर भी जीव असंख्यात गुणा है। उत्कृष्ट बादर निगोद में जितने जीव थे, उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में, उससे जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा में जीव असंख्यात गुणे हैं, कितने असंख्यात गुणा है, अंगुल के असंख्यात भाग गुणा है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का ऐसा ही है ना, वहां पर परमाणु ज्यादा हो गए इसलिए। हाँ वही तो बताना चाहते हैं, और शंकाकार ने वही तो पूछा था कि इसकी पुलवी इतनी कम है, तो उसको उसी के साथ लेना था, बीच में आप गैप क्यों रखी है, प्रश्न तो वही था और उसी का समाधान चल रहा है। देखो, और यहां इसका कोई बाधक भी नहीं है किंतु साधक ही है, अन्यथा अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार नहीं बन सकता। ये जहां जहां अंगुल शब्द है ना, वहां सीधा करना उसको। इस प्रकार यह 20वीं वर्गणा कही। अभी तो सूक्ष्म निगोद वर्गणा का वर्णन आया नहीं है, ये ध्रुव शून्य वर्गणा में ही है, परंतु ये गैप नहीं होनी चाहिए थे, इस पर बहस चल रहा था, तो इसलिए आगे वाली सूक्ष्म निगोद वर्गणा की जगन्य की भी जीवों का प्रमाण उन्होंने अभी कह दिया है। सूक्ष्म निगोद वर्गणा का वर्णन तो अभी चलेगा। 20 नंबर की वर्गणा कौन सी हुई अभी हमारी, ध्रुव शून्य वर्गणा हुई है। वो ध्रुव शून्य वर्गणा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर शंकाकार की शंका थी, उसके समाधान में हमने सूक्ष्म आगे वाली वर्गणा की बात की। अब उस वर्गणा का वर्णन अब चलेगा। 95 सूत्र, ध्रुव शून्य दव्य वर्गणानम उवरी सुहमुनिगोद वगणा नामा। ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर सूक्ष्म निगोद वर्गणा होती है। निगोद वर्गणा होती है। ये द बराबर है आपके, इसमें छपा नहीं है क्या? मैंने तो सूत्र पढ़ा। हाँ, उत्कृष्ट ध्रुव करना, ध्रुण हुआ है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर एक परमाणु वहां बढ़ा दे। सूक्ष्म निगोद, अभी घो हो गए उसको गो करना, निगोद द्रव्य वर्गणा होती है। अभी वो कहाँ पाई जाती है आपको पता है? सूक्ष्म निगोद कहाँ पर है? पूरे लोक में है, इसलिए क्या कहते हैं, वह जल में, स्थल में और आकाश में सर्वत्र दिखलाई देती है। आकाश यानी वो तो पूरा आकाश द्रव्य नहीं समझना। हाँ हाँ, लोकाकाश वाला आकाश, हम जिसको आकाश में है सर्वत्र है, इस कहने के लिए। तो जल में है, थल में है, आकाश में है। हाँ, सबके पेट में भी है, वो कहेंगे बाद में, महामत्स्य को याद करेंगे। सर्वत्र दिखलाई देती है क्योंकि बादर निगोद वर्गणा के समान इसका देश नियम नहीं है। देश नियम है ना, यहीं पर रहते ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि बादर निगोद वर्गणा में कहाँ नहीं रहते, उसके तो हमने वो आठ अलग अलग वो शरीर, उसके आधार से नहीं रहते, क्योंकि उसको आधार की ज़रूरत है। इसको दूसरे शरीरों का आधार की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना शरीर है और उसका ग्रुप जो है वो कहीं पर भी पाया जाता है। इतनी विशेषता है कि यह सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा क्षपित कर्मांशिक विधि से और क्षपित घोलमान विधि से आए हुए सूक्ष्म निगोद जीवों के ही होती है। अभी एक क्षपित जीव कौन है? अभी दूसरे जीवों की तो बात ही नहीं है। पहले क्षीण कषाय में तो हमको ये क्षीण कषाय जीव है और उसके आधार से रहने वाले, शरीर के आधार से रहने वाले ये बादर निगोद है, ऐसी वहाँ चर्चा थी। अब यहाँ तो ये बात नहीं है। अब ये जो क्षपित कर्मांशिक और क्षपित घोलमान कह रहे वो सूक्ष्म निगोद जीवों को ही कह रहे हैं कि उसको कहने से क्या होगा, क्योंकि हमें तो यह तो छह पुंज देखने ना, उनका औदारिक, तेजस, कारमान और उसके विश्रसोपचय, ऐसे छह पुंज देखना है। तो क्षपित कर्मांशिक रूप से आए हुए के कर्म तो इतना उसने अभी खिपाया है, तो उसके साथ वो कर्मों का पुंज है वो कम होगा, इसलिए उसमें वो जीव ज्यादा लेने। देखो, जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा किसको होगी? तो क्षपित कर्मांशिक विधि से और क्षपित घोलमान विधि से आए हुए। घोलमान किसको कहना? कम ज्यादा होते रहते, परंतु मुख्यतः वो क्षपित की वहां ज्यादा है, इसलिए वो क्षपित घोलमान कहा। उनके ही होती है, अन्य के नहीं, क्योंकि वहां जघन्य द्रव्य के होने में विरोध है। अन्य जीवों में वो कारमान तो बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। यहां भी आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलवियां होती है। एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। पुलवियों की संख्या यहां पर आवली के असंख्यात वे भाग है, पर एक एक पुलवी में निगोद के शरीर कितने हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण, और एक एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव, वो जाव दिख रहे हैं, जीव होते हैं। क्षपित कर्मांशिक यानी जो एक इंद्रियों में जाने के बाद भी उनके वो स्थिति कांड घात वगैरह होते हैं ना, तो उसमें उनके तो कर्म कम हो जाते हैं, स्थिति भी घटती है और कर्म खिपाते भी है ज्यादा। वो ये तो श्रेणी में खिपते हैं, वो उसकी बात नहीं है वहां पर। हाँ, ऐसे भी है ना, पहले संयम धारण किया था और वो इतने बार सम्यक तो प्राप्त किया, इतने बार अनंतानुबंधी का भी संयोजन किया है, इतने संयम के कांड कितने किए हैं, उपशम श्रेणी भी चढ़कर आया, और ऐसा जीव अभी निगोद में गया है तो उसने इतना कर्म पहले खिपाया है, और वहाँ जाने के बाद भी वो उसके स्थिति कांड आदि होते हैं, ऐसे जीवों को क्षपित कर्मांशिक कहते हैं। ये पहले अपने ये विस्तार में हमने देखा था, क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक। गुणित कर्मांशिक में उल्टा लेना, क्षपित कर्मांशिक में वो तो योग वगैरह उसके ये हमने छह आवास देखे थे उसके बारे में, ये भवावास, अद्धावास हो, योग भी जघन्य जघन्य, पर्याप्त भव कितने किए, वो पर्याप्त काल कितना था, उस पर ये सारे क्षपित कर्मांशिक और उसके अपोजिट में गुणित कर्मांशिक लिया था। गुणित कर्मांशिक वो सातवें नरक का अंतिम समय वाला, वो भी कौन सा जीव, तो त्रस की स्थिति उसकी खत्म होने को आई है ऐसा जीव लिया था। पहले कहाँ कहाँ एक इंद्रियों में भटका, कितने काल तक, वो बहुत डिटेल में हमने देखा था उसको। तो ऐसे ये जीव पाए जाते हैं, तो उनमें कर्मों की वो जो सत्ता में पड़े परमाणु कम है, इसको क्षपित कर्मांशिक कहा। उन जीवों में क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होते हैं। जीव कितने हैं? अनंत अनंत। और क्षपित कर्मांशिक कितने उसमें? आवली के असंख्यातवे भाग से इतने ही है। देखा ना, एक एक निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव है। उन जीवों में क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होते हैं। शेष सब जीव क्षपित घोलमान होते हैं। इन अनंतानंत जीवों के औदारिक तेजस और कार्मण शरीरों के कर्म नोकर्म और विसरसोपचय परमाणु पुद्गलों को ग्रहण कर सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गना होती है। वो एक बंधन में बद्ध है, ये उसके क्राइटेरिया है, उसको सूक्ष्म निगोद वर्गना कहा। अब इसका कथन करते हैं। यथा औदारिक शरीर में एक विसरसोपचय परमाणुओं के बढ़ने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। औदारिक शरीर के जितने परमाणु हैं, एक एक परमाणु के साथ ये अनंत अनंत विसरसोपचय के परमाणु लगे हुए हैं, फिर भी उसमें भी वेरिएशन होगा। किसी का एक विसरसोपचय ज्यादा है तो उसको कहेंगे अपुनरुक्त स्थान, संख्या एक परमाणु से बढ़ी। इस प्रकार ये पहले बहुत विस्तार से उन्होंने एक 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 बढ़कर बताया था। तो इसमें विसरसोपचय मैक्सिमम कितने बढ़ेंगे उसको कहते हैं। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे स्थान प्राप्त कर सब जीवों के औदारिक शरीर विसरसोपचय के द्वारा उत्कृष्ट होने तक एक एक विसरसोपचय परमाणु बढ़ाना चाहिए। ओहो, अभी पहले विसरसोपचय बढ़ाना, अभी औदारिक, पहले हमने क्या किया था? विसरसोपचय बढ़ाते थे, फिर औदारिक का एक परमाणु बढ़ाते थे। अब यहाँ जितने जीव है और उसके शरीर कितने हैं? असंख्यात में होगे ना, तो शरीर एक भी बढ़ाना नहीं, यानी शरीर के परमाणु नहीं बढ़ाना। पहले प्रत्येक जीवों के औदारिक संबंधी विसरसोपचय में एक एक बढ़ाना। वही करते आए थे। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, सब जीवों के औदारिक शरीर विसरसोपचय के द्वारा उत्कृष्ट होने तक एक एक विसरसोपचय परमाणु बढ़ाना चाहिए। पुनः उन्हीं जीवों के तेजस शरीरों के ऊपर सब जीवों से अनंत गुणे स्थान प्राप्त कर विसरसोपचय के द्वारा उन जीवों के तेजस शरीर उत्कृष्ट होने तक एक एक विसरसोपचय परमाणु बढ़ाना चाहिए। वही वही सिस्टम लिए। हाँ, पुनः उन्हीं जीवों के कार्मण शरीरों के ऊपर, यानी उन्होंने डिटेल नहीं बतलाते हुए विसरसोपचय की भाषा में बताया, बीच बीच में एक एक औदारिक का परमाणु भी बढ़ते जाएगा। उन्हीं जीवों के कार्मण शरीरों के ऊपर सब जीवों से अनंत गुणे स्थान प्राप्त कर विसरसोपचय द्वारा उनके कार्मण शरीरों के उत्कृष्ट होने तक एक एक विसरसोपचय परमाणु बढ़ाना चाहिए। अनंतर इन औदारिक शरीरों के ऊपर विसरसोपचय के साथ बढ़े हुए एक परमाणु से युक्त अन्य जीव के सब जीवों से अनंत गुणे स्थानों का अंतर देकर यह अन्य स्थान उत्पन्न होता है। पुनः निरंतर स्थान इच्छित है, इसलिए इस विसरसोपचयित एक औदारिक परमाणु को बुद्धि के द्वारा पृथक स्थापित करके पुनः एक परमाणु विसरसोपचय मात्र से हीन पहले के औदारिक शरीर पुंज में पहले निकाले हुए परमाणु को मिला देने पर एक परमाणु अधिक होकर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः एक विश्लेषोपचय परमाणु की वृद्धि होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, जैसे हमने पहले देखा था वैसे यहाँ भी बढ़ाते जाना। दूसरे विश्लेषोपचय परमाणु के बढ़ने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है, तीसरे विश्लेषोपचय परमाणु के बढ़ने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक एक परमाणु माँ करना उसका अधिक के क्रम से सब जीवों से जी बराबर करना, जो दिख रहे हैं ना उसको जी करना। फिर पढ़ती हूँ इसको। इस प्रकार एक एक परमाणु अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर विश्लेषोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर इतने ही अपुनरुक्त स्थान होते हैं। इस प्रकार बादर निगोद वर्गणा की बढ़ाने की विधि के अनुसार, जैसे वहां बढ़ाए थे, औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों के विश्लेषोपचय सहित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग मात्र परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर। छह पुंज किए ना हमने, औदारिक का एक पुंज, उसका विश्लेषोपचय का एक, तेजस शरीर का उसका विश्लेषोपचय का, कार्मन का और उसका विश्लेषोपचय का। तो विश्लेषोपचय सहित अपने अपने शरीर का एक एक परमाणु बढ़ाने पर वो परमाणु कहाँ तक बढ़ सकते हैं, तो अभव्यों से अनंत गुणे वाला वो अनंत, इतने बढ़ने पर। अभी यानी टोटल मेजॉरिटी यानी उसके मैक्सिमम पॉसिबल जब बढ़ गए तब क्या करना, एक सूक्ष्म निगोद जीव को प्रविष्ट कराना चाहिए। जो अनंत अनंत जीव थे ना उसमें और एक निगोद जीव एक्स्ट्रा लिया, फिर वो ऐसा जीव लेना कि उसकी जो यहाँ मेजॉरिटी उत्कृष्ट संख्या हुई थी उसमें उतना ही लेना, या उसमें एक परमाणु अधिक लेना, फिर विश्लेषोपचय एक एक बढ़ाना उसका। एक एक स्थान से अधिक चाहिए हमको, जब जीव बढ़ाएंगे तो वो पुंज उनका उतना ही होना चाहिए, फिर उसमें एक एक विश्लेषोपचय बढ़ाओ। एक नया जीव आया ना उसमें, हाँ, जो प्रीवियस वाला जो उत्कृष्ट था तो उतना ही, उतने ही छह पुंज वाला एक नया जीव लेना है। हाँ, पहले उतने ही टोटल वाला लिया है, फिर एक एक उसमें विश्लेषोपचय वाला बढ़ाया। इस प्रकार बादर निगोद वर्गणा के बढ़ाने की विधि के अनुसार एक जीव बढ़ाया, दो जीव बढ़ाए, कितने बढ़ाने, अनंतानंत सूक्ष्म निगोद जीवों के प्रविष्ट होने पर, जीव प्रविष्ट हुए फिर क्या होगा, एक साधारण निगोद शरीर प्रविष्ट होता है। एक 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 परमाणु से बढ़ाते हुए चले हम। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों के प्रविष्ट होने पर, देखो पहले में पहले एक एक परमाणु बढ़ाया हमने, फिर एक एक सूक्ष्म निगोद प्रविष्ट कराया, उसके बाद अनंतानंत जीव प्रविष्ट होने पर एक साधारण शरीर प्रविष्ट हुआ, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण शरीर निगोद शरीर प्रविष्ट होने पर एक पुलवी प्रविष्ट होती है। इस प्रकार आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलवियों के बढ़ने पर जल में व स्थल में सूक्ष्म निगोद वर्गणा स्वस्थान उत्कृष्ट होती है। उसमें भी ये दो भेद कर रहे हैं, स्वस्थान उत्कृष्ट। पुनः इस सूक्ष्म निगोद वर्गणा के साथ महामत्स्य के शरीर में सूक्ष्म निगोद वर्गणा समान लब्ध होती है। पुनः पहले की सूक्ष्म निगोद वर्गणा को छोड़कर, अब ये समान आए ना, अब ये समान समान लेकर, क्योंकि वो स्वस्थान रूप से अंतराल में जो जल में स्थल में आकाश में पड़ी है वो स्वस्थान कहलाएगी। वो किसी के, वो दूसरे किसी के साथ चिपकी हुई नहीं है, एक बंधन में बद्ध नहीं है। अभी ऐसे ही महामत्स्य के शरीर में इतने ही समान पाई जाती है। अब उसमें एक एक परमाणु और एक जीव बढ़ाएंगे। अभी इसके समान महामत्स्य के शरीर की सूक्ष्म निगोद वर्गणा को ग्रहण कर पुनः इसके ऊपर पूर्व विधि के अनुसार आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलवियों की वृद्धि होने तक महामत्स्य के शरीर में एक बंधन बद्ध छह जीव निकायों के संघात में उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा दिखलाई देती है। नहीं समझे? महामत्स्य का शरीर कितना बड़ा है? साढ़े बारह करोड़ घन योजन बताओ। हाँ, कैसे निकालेंगे? डायमेंशन क्या है महामत्स्य के? 1000 योजन, 500 योजन और 250 योजन। लाख नहीं है तो ये जो हजार योजन है कितना हुआ? भरत क्षेत्र भी ऐसा कितना है? 526 है पॉइंट। तो इतना बड़ा है तो वहाँ उसके शरीर के ऊपर क्या क्या नहीं रहते होंगे ना? तो वहाँ छह निकाय के जीव वहाँ पाए जाते हैं। छह निकाय कौन से? छटकाय जीव, पांचों स्थावर और त्रस। तो उसके पीठ पर भी जंगल विंगल होते होंगे कि नहीं? और वो जंगलों में भी वहाँ प्राणी वगैरह सब रहेंगे कि नहीं? छह जीव निकायों का समूह है वो। हाँ बिल्कुल दौड़ेंगे, क्यों नहीं दौड़ेंगे? अरे बहुत होगी, सब होगी। देखो, वो छह जीव निकायों के संघात में उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा दिखलाई देती है, वहां दिखलाई देती है, क्योंकि अभी वो उसके साथ वो भी एक बंधन बद्ध में है, या वहां पर वो पाई जाती है, ऐसा कहा। यहाँ आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलविया है और एक एक पुलवी के असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव है। यहाँ गुणित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव लेना भी। देखो, पहले हमने जघन्य देखना ना, तो सुक्षपित कर्मांशिक ले लिया था। अब यहाँ गुणित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही होते हैं, शेष सब जीव गुणित घोलमान होते हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। अब जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा पर्यंत सब जीवों से अनंत गुणे निरंतर स्थान प्राप्त होकर एक ही स्पर्धक होता है। क्या कहना चाहते हैं? वर्गणा की अपेक्षा लेके एक 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 परमाणु बढ़ते हुए ये सारे स्थान देखे थे, उसको वर्गणा कहा ना। एक वर्गणा मान लेते लाख परमाणु की थी, पर लाख और एक परमाणु, वो दूसरे और एक वर्गणा और एक वर्गणा, ऐसे सबको मिलकर एक वर्गणा नाम दिया है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसको एक स्पर्धक कहा। यदि बीच में अंतर होता है तो उसको दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक कहते हैं, परंतु ऐसे वहां बीच में कोई अंतर नहीं पाए जाते, क्योंकि मध्य में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ के समस्त जीवों के औदारिक तेजस और कारमान शरीर के कर्म और नो कर्म विश्रसोपचय सहित सब परमाणुओं को ग्रहण करके उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा होती है। देखो, यहाँ के समस्त जीव, यहाँ के समस्त जीव ने महामत्स्य तो है और वहां छह निकाय के जीव है। और वहां पर जितने उतने स्पेस में जितने वो सूक्ष्म निगोद वगैरह पाए जाएंगे, उन सबको मिलकर एक पूरा ले लिया उन्होंने। और जघन्य में तो हमने लिया था ये क्षपित कर्मांशिक, जल में, स्थल में, आकाश में, और ये यहाँ महामत्स्य के शरीर। वो उसमें स्वस्थान में लिया था, जघन्य स्वस्थान में लिया था, और यहाँ महामत्स्य की अपेक्षा से लिया है ना। अन्य जीवों के भी वहां शरीर है निगोद। देखो देखो, आपको ये 115 में तो स्वस्थान उत्कृष्ट बताया था, और ये जघन्य देख रहे हम। ये परस्थान लिया, ये जघन्य किसको होगा? तो जघन्य भी स्वस्थान में घटित होगा। तो ये सूक्ष्म निगोद वर्गणा 114 पृष्ठ पर पहली लाइन, क्षपित कर्मांशिक वगैरह से आए हुए जीव। वो 113 में नीचे लिखा है, देखो, जल में, स्थल में, आकाश में, सर्वत्र दिखाई देती है। उसमें सूक्ष्म में सूक्ष्म कौन सी होगी, जो क्षपित कर्मावशेक और क्षपित गोलमान से आए हैं, और वो जगन्य सूक्ष्म निगोद वर्गण। ये सूक्ष्म निगोद वर्गणा इन सच एंड टोटल, उसमें जगन्य किसके, हाँ, जगन्य में जगन्य कौन सी है, स्वस्थान। स्वस्थान का भी उत्कृष्ट बीच में आएगा, उसको भी बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने परस्थान में, उसी के समान परस्थान में जो पाए जाते हैं वहां से शुरू किया था, और फिर परस्थान में उत्कृष्ट घटित किया। छह निकाय के जीव जहाँ पाए जाते हैं, ऐसे महामत्स्य के शरीर में वहां जितनी पाई जाती है, उनके भी शरीर, इनके भी शरीर, सबको इकट्ठा लिया है। तेजस कारमान सब है ना, महामत्स्य के अपना शरीर, वहां जितने त्रस्काय पाए जाएंगे उसके शरीर के आधार से वो भी ले लेना है, सभी का इकट्ठा लिया। और वहां सूक्ष्म भी उसी स्पेस में है, इसलिए उसको सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहा। यानी अकेले सूक्ष्म निगोद जीवों के शरीर वो तो स्वस्थान में लिए हमने, ये इतनी, हाँ, स्वस्थान वाला अवलिक वो पुलवियों की संख्या है। क्या स्कंदों की बात ही नहीं आ लिए, या तो पुलवियों की बात चलाई ना, एक बंधन बद्ध होने चाहिए ये बात है उसकी, तो इतने पुलवियों एक बंधन बद्ध होती है ऐसा लिया है। ऐसी अनेक पुलविया है ना, असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया है, परंतु जब बादर निगोद वर्गणा में हमने क्या देखा था, वो श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, इतने पुलविया एक बंधन बद्ध होनी चाहिए उसकी कंडीशन है। तो यहां भी सूक्ष्म और ये तो ऐसे वो इनके शरीर के आधार से नहीं रह रहे, परंतु उसी क्षेत्र में है, तो सबके मिलकर औदारिक कारमान तेजस का एक पुंज समझेंगे हम। ये जो समय ज्ञान चंद्रिका में नाम तो आए, परंतु उसका ऐसा स्वरूप क्लियर नहीं हुआ था, भले वहां कहा होगा। हाँ, इतना वहां ये लिखिए बातें, जगन्य किसको होते, उत्कृष्ट किसको होते, ये उन्होंने, स्वरूप चंद जी ने उसमें कुछ करेक्शन भी किया था, मगर वो घटित नहीं हुआ था उसमें, अपनी पुस्तक देखनी पड़ेगी आज। वहां भी ये कहा है, बादर निगोद वर्गणा सूक्ष्म किसके है, जगन्य किसके, उत्कृष्ट किसके, सूक्ष्म निगोद वर्गणा भी जगन्य किसके, उत्कृष्ट किसके, और वहां एक क्षपित कर्मावश्यक वगैरह सब बात बताई है, परंतु तब कुछ नहीं समझते थे ना। बहुत सारी बातें जो हमने धवला में पढ़ी वो सब उसमें है। एक क्षपित कर्मावशिक किसको कहना, वो पूरा चक्र कहाँ कहाँ घूम के आए, वो सब बातें बताई उसमें। अब वो बातें आएगी आप जब बेटा, हाँ, अब ये टाइम है आप। देखो यहाँ जगन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है, पल्य का असंख्यातवा भाग गुणकार है। इस प्रकार यह 21वीं वर्गणा कही, वो ब दिख रहा है वो करना, वर्गणा अब फिर ध्रुव शून्य वर्गणा आ जाएगी। सुहमणिगोद दव्य वर्गणाणम उवरी ध्रुव शून्य दव्य वर्गणाणाम, सूक्ष्मणिगोद द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। अभी तक तो मुझे तो ऐसा ही प्रश्न हो पड़ता था, ये आहार वर्गणा से ये सारे औदारिक आदि शरीर बनते हैं, तो फिर ये निगोद वर्गणा अलग क्यों कही है। तभी तो ऐसा ही लगता था कि निगोदों के शरीर को निगोद वर्गणा कहते होंगे, परंतु औदारिक शरीर है, इसीलिए मुझे प्रश्न अभी तक पड़ता था इसकी वर्गणा अलग क्यों कही है। प्रत्येक शरीर वर्गणा, दूषण वर्गणा, वो तो ऐसी क्या बात है। तो ये सबका मिलकर जो पुंज है, औदारिक तेजस कारमान का पुंज, और जो बादर निगोद जिसके शरीर के आधार से रहते उस जीव के भी औदारिक तेजस कारमान लेना, और इनके भी औदारिक तेजस कारमान लेना, और सबका मिलकर एक पुंज कहना। नहीं, संख्या के वेरिएशन नहीं, उसका नाम ही अलग दिया ना। हाँ, एक बंधन में बद्ध ऐसा पूरा पूंजा, वो पूरा इच्छा पूंजा हमने देखे थे विश्वसोपचय से, उसको नाम दिया। हाँ, बादल निगोद कहा, उसके शरीर से आधार से है ना, इसलिए जो मात्र केवल सिर्फ प्रत्येक शरीर ही है उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा किया। जिस प्रत्येक शरीर के आधार से बादर है, उस ओरिजिनल शरीर प्लस इन निगोदों का शरीर लिया ना, प्रत्येक में जो जिसके आधार से निगोद नहीं है, ऐसे जीवों के औदारिक तेजस कारमान कहो या वैकिरिक तेजस कारमान को, उनको इकट्ठा लिया या आहारक तेजस कारमान, तो ये पता नहीं था तभी। अब 96 नंबर, सुहम निगोद दव्य वग्गणानम उवरी धुवसुन्न दव्य वग्गणानम, उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा में एक अंक के, अभी ये अंक बराबर है फिर भी उसके वो खोड़ो चाहिए, आधा है वो अंक में, वो ड वाला है ना, इस अंग उसका अंग कहते कख गंग, वो आधा चाहिए अंक के मिलाने पर चौथी ध्रुव शून्य वर्गणा की सबसे जघन्य वर्गणा होती है। ये ध्रुव शून्य वर्गणा हम देखते हैं ना अभी, अनंतर एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। यह जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? ये गुणकार भी सब जगह अलग अलग है। जगत प्रतर का असंख्यात भाग गुणकार है, जो कि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। हाँ, वो सबके गुणकार कितने हैं वो बताएंगे, शायद लास्ट में बताएंगे, आप हम देखेंगे बाद में। अलग 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 जगह अलग अलग है। हाँ, वो सब बताएंगे। हाँ, क्योंकि सब सारांश करके कि कौन सी वर्गणा में गुणकार क्या है, कहाँ कहाँ कॉमन गुणकार है, वो सब बताएंगे। पहले हमने देखा था ना, कभी कहीं कहीं तो विशेष अधिक प्रमाण है, कहीं गुणकार रूप में है। हाँ, क्योंकि बीच में जो अग्राह्य अग्रहण वर्गणा में होती है वहाँ तो कुछ अधिक में होता, और फिर जहाँ जहाँ बीच बीच में ग्रहण रूप वर्गणाएं होती थी वो सब बताएंगे। अभी गोमटसार में भी गाथाएं हैं ये। हाँ, ये 22, इस प्रकार यह 22वीं वर्गणा कही। अभी 97 नंबर का सूत्र, ध्रुवशून्य वग्गणानाम उवरी महाखंड दव्य वग्गणानाम, ध्रुवशून्य द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। ये 23वीं अंतिम वर्गणा है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के, ये आधा करना उसका अंग मिलाने पर सबसे जघन्य महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। देखो, महास्कंद में भी जघन्य और उत्कृष्ट होते हैं। जघन्य में जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट परमाणु, पूरे ही लोक व्याप्त, लोक को व्यापने वाला एक स्कंद, उसको महास्कंद कहा। हाँ? उसमें आते है ना सूक्ष्म और बादर पृथ्वियों का। हाँ, उसका साइज तो सेम है, परमाणुओं की संख्या जगन्य उत्कृष्ट होगी ना, परमाणुओं की संख्या कम ज्यादा होगी ना, परमाणुओं की संख्या अनंत ही है, और उसके कितनी स्पेस व्याप रहे पूरा लोकाकाश, तो उसमें परमाणु ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते, इसीलिए जगन्य उत्कृष्ट कहा। ये सब मिलकर पूरे पुद्गल को नहीं लिया है वर्गणा ने, अभी पूरी एक एक बंधन बद्ध वर्गणा ऐसी चाहिए ना। सब जुड़ी हुई ऐसे परमाणु चाहिए। देखो उत्कृष्ट ये है जग उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। अनंतर एक अधिक से क्रम से कितने अभी एक ज्यादा परमाणु दो ज्यादा परमाणु कितने हो सकते हैं। एक अधिक क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाने पर जाकर उत्कृष्ट महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। यह जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। इतने स्थान गए फिर भी वो विशेष अधिक कहा, क्योंकि मूल में ही अनंत है ना। विशेष का प्रमाण कितना है, सबसे जघन्य महास्कंद वर्गणा में पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना विशेष का प्रमाण है। यहाँ उपयोगी पढ़ने वाली गाथाएं यथा यानी कहा यहाँ नहीं लिखा है, पर पहले हमने पढ़ा है ये जो आठ पृथ्वियां है जो स्थूल रूप से परिणमित वो पृथ्वीकाएं जो है और ये बीच में पूरे ही सूक्ष्म पृथ्वीकायिक है उनका एक जुड़ा हुआ जो स्कंद कहलाएगा पृथ्वीकाय। यहाँ परमाणुओं की संख्या ले रहे हम है ना, उसके एक जीव का एक शरीर पृथ्वी का एक जीव असंख्यात है। यहाँ निगोदों की प्रश्न ही नहीं है, आपको ऐसा कहना है कि निगोदों के शरीर ज्यादा होते हैं। हाँ, परंतु इसके भी विशेष उपचय होगे कि नहीं होगे। अच्छा, यानी इनका ऐसा कहना कि निगोदों के शरीरों में जो वो वहाँ सभी पुंजली है ना, छह पुंजली है और यहाँ अकेले आप पृथ्वी काय को ले रहे हैं, वो सूक्ष्म पृथ्वी का अकेले जीव मत लेना आप। अभी जीव निकल गए हैं, वो पृथ्वी काय रह गया ना वहां पर देखते अभी यथा ये सात और आठ एक साथ है। अणुसंख्या संख्ये चा तदनंता वगणा अगे छाओ आहार तेज भासा मणकम यदु अखंदा सांतर निरंतरे तर सुन्ना पत्तेय देह धुव सुन्ना बादरणि गोद सुन्ना सुहुमा सुन्ना महाखंदो। सभी नाम आ गए 23। देखो इसको पढ़ेंगे। अनुवर्गणा संख्यात अनुवर्गणा असंख्यात अनुवर्गणा अनंत अनुवर्गणा आहार वर्गणा अग्राह्य वर्गणा। हाँ वहाँ अग्रहण लिखा था, यहाँ अग्राह्य लिखा है। तेजस वर्गणा अग्राह्य वर्गणा भाषा वर्गणा अग्राह्य वर्गणा मनोवर्गणा अग्राह्य वर्गणा कार्मण वर्गणा ध्रुवस्कंध वर्गणा सांतर निरंतर वर्गणा शून्य वर्गणा। ध्रुव शून्य के बदले यहाँ शून्य लिखा उन्होंने। हाँ ध्रुव शून्य ही है, सुनना लिखा ना अभी इसके गाथा में लिखना था तो सुनना लिख दिया उन्होंने। प्रत्येक शरीर वर्गणा ध्रुव शून्य वर्गणा, अभी ऊपर ध्रुव सुनना लिखा, पहले सुनना लिखा था अभी ध्रुव सुनना लिखा, ये गाथा के हिसाब से छंद के हिसाब से लिखा है। बादर निगोद वर्गणा शून्य वर्गणा सूक्ष्म निगोद वर्गणा शून्य वर्गणा और महास्कंद वर्गणा स्कंध करना।
ये कार्मण के बाद में ध्रुव स्कंद आई है।
हाँ ध्रुव
हाँ
देखो
कार्मण के बाद
कार्मण के बाद में ध्रुव स्कंद वर्गणा है और उसके पहले एक सांतर निरंतर है। हाँ देखो ये निकालना, देखते हैं उसको निकाल कर। ये पेज नंबर है 62 में है। ये सांतर निरंतर कहाँ गए? 15वीं थी ना, हाँ 64 में है। पहले ध्रुव स्कंध जो है, हाँ वहाँ तो इतना ही लिखा है, उसके ऊपर है। देखो 64 पर आ गए। यह ध्रुव स्कंध लिखा है ना अभी, यहाँ ध्रुव स्कंध द्रव्य वर्गणा, ये अंत दीपक है। इससे पिछली सब वर्गणाएं ध्रुव ही है, अर्थात अंतर से रहित है। और यहाँ से आगे जो कही जाने वाली सब वर्गणाओं में अग्रहण पने की निरंतर अनुवृत्ति, यानी वो यहाँ से आगे वाली है वो अग्रहण है, उसकी अपेक्षा निरंतर का। यहाँ तक जो है पांच के अंतर अंतर में वो तो अग्राह्य वर्गणाएं थी, परंतु भी यहां से आगे वाले सभी अग्रहण ही है। हाँ नहीं, ध्रुव स्कंद में 64 पेज पर मैंने पहले 3 लाइन पढ़ी अभी। उसका और कुछ ज्यादा उन्होंने जिक्र नहीं किया है, बस ध्रुव स्कंध द्रव्य वर्गणा इतनी बात बताई, और उसके बाद सांतर नितर निरंतर द्रव्य वर्गणा इतनी बात कही।
नहीं अपन करते तो पांच ही ना, औदारिक वैयक्तिक आयत कर्मण पांच ही अपन ग्रहण करते 23 में से।
नहीं नहीं नहीं, वो औदारिक वैक्रिक और आहार तो आहार वर्गणा में आ गई, आहार वर्गणा एक हो गई। तेज आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनो वर्गणा और कर्मण वर्गणा, ये पांच ग्रहण करते हैं। औदारिक के अलग नहीं लेते, औदारिक वैकरेक और आहारक तीनों मिलकर आहार वर्गणा, आहार वर्गणा हुए। हाँ फिर तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और पास लास्ट में कर्मण वर्गणा। हाँ तीन अलग भी कर देते, उसमें तीन है ना औदारिक, औदारिक शरीर के जो वर्गणा है वो तो जघन्य की ओर हो जाएंगे।
तो फिर वो तो 25 हो जाएगी।
और 28 है, उन्होंने पढ़ी है आगे। हाँ उसके भेद करेंगे तो और बढ़ जाएंगे। हाँ देखो अभी यहाँ पढ़े हमने यहाँ और महास्कंद वर्ग, ये तो 7-8 का अर्थ हुआ।
सांतर निरंतर का मतलब था,
सांतर निरंतर में भी वो अंतर सहित निरंतर ऐसा कुछ उसमें। 64 पर अभी पढ़ा ना हमने। और आगे है वर्णन। यह वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है, जैसे हम कहते ना इररेगुलरली रेगुलर होता है, रेगुलरली इररेगुलर। हाँ इररेगुलर। हाँ चलो चलो, समय तो हो गया, 9वां पढ़ेंगे क्या? नहीं हो गया, लंबा है। चलो हम कल पढ़ेंगे इसको। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होलो। दोषी साहब।